हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 24 एंड 25। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरतरुणबिम्बफला धरोष्ठा पुरीन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति देव ये स्तवे वेदेशाङ्गपत् क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विधो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो हमने देखा भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश कर चुके हैं और हर किसी से उनकी वरैश्चा भी मतेर विभु, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है तो जो जैसा चाहता है जिसके मन में जिस प्रकार की इच्छा है, भगवान सबके साथ द्वेष से ही मिल रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं, किसी को सर झुकाकर, किसी को वचन से, किसी को आलिंगन करके, किसी को हंसता हुआ मुखमंडल दिखला के। तो सब लोग, चाहे वो चंडाल वंश में क्यों न जन्म लिए हो, भगवान सबकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो सूत गोस्वामी ने बताया, यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे, कि जिस जिस लोक में जिस जिस तरह की विधि थी, मतलब लोगों को किस तरह से मिलना चाहिए, उसी प्रकार सर्वेषां मानमाददे, हर किसी को भगवान ने सम्मान दिया। उसके बाद श्लोक नंबर 23 में हमने पढ़ा, यहाँ पर मुझे क्षमा कीजिएगा, एक शब्द उच्चारण में मुझसे गलती हो गई थी। सूची कहते हैं, स्वयं च गुरु भीर्विप्राय सदारय तवे, ये जो सदारय लिखा हुआ है मैंने इसको साधरय पढ़ा था, सदारयस्त वैरैरपि आशीर्भिर युज्यमान्यो नै वन्दिभिश्चाविशत् विशद पूरम। इसको सदार है, दार कहते हैं पत्नी, सुत कहते हैं बेटे को और धार कहते हैं पत्नी को। यहाँ पर लिखा है सदार है, यानी पत्नियों के साथ। तो सारे जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, गुरुजन थे, वो सब जो कि बहुत बड़े हो गए थे, स्थिर विप्राय, जो विप्र सदैव घर में हमेशा रहते थे, बाहर निकलते थे, वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद युज्यमानों, वो सब भगवान को आशीर्वाद देने के लिए आज नगर में प्रवेश कर रहे हैं, राजमार्ग से जहाँ पर भगवान की रथ यात्रा चल रही है। वास्तव में ये वास्तविक रियल रथ यात्रा है, भगवान रथ पे जा रहे हैं और सब भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जब रथ यात्रा निकलती है तो हर जगह से लोग आते ना भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के रथ को खींचने के लिए। तो यहाँ पर तो भगवान के रथ तो चला रहे हैं साथ ही, लेकिन सब भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। तो आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, राजमार्गम गति कृष्ण द्वारकायः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवा। राजमार्गं गति कृष्णे द्वारकायः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्रः तदीक्षणं महोत्सवः। राजमार्गं गति कृष्णे द्वारकायः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणं महोत्सवः। तो जब भगवान राजमार्ग पर चल रहे हैं तो जो पुरुष लोग हैं, जो वृद्धा, जो ब्राह्मण हैं, जो उनके रिलेटिव रिश्तेदार अभिमन्यु इत्यादि, ओ सॉरी क्षमा, प्रद्युमन इत्यादि जो थे, वो सब तो भगवान को रिसीव करने के लिए नीचे उतरे हैं। तो वहां की जो द्वारिका की स्त्रियां हैं, अब सूत गोस्वामी उनका वर्णन कर रहे हैं। पहले हमने सुना था हस्तिनापुर की स्त्रियों का वर्णन, और अब द्वारिका की स्त्रियों का, उनके स्नेह का अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान वर्णन कर सॉरी सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। राजमार्गम गति कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया, जब भगवान राजमार्ग पर गते, मतलब जब जा रहे थे, कृष्ण अर्थात भगवान जब द्वारिका के राजमार्ग पर जा रहे थे, तो द्वारिकाया यानी द्वारिका नगरी की कुल स्त्रियां, प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां, जो दूसरी थी वैश्या इत्यादि, वो तो नीचे आई थी भगवान के सामने उनका दर्शन करने, लेकिन जो प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां थी वो क्या कर रही थी, हरम्याणी यानी राजमहलों में आरूरोह ऊपर जो राजमहल की जो अटारियां थी, जो छतें थी, उनको बोलते हैं हरमयानी, उनमें उसमें चढ़ गई थी। और सूत गोस्वामी शौनक मुनि को कह रहे हैं विप्रा। विप्रा मतलब अब वो सुना रहे ना कथा, याद है ना आपको कि जब उन्होंने यज्ञ किया था सारे 88,000 ऋषियों ने मिलकर, तो सूत गोस्वामी आए थे, फिर उनसे प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हुई थी। तो उस समय अब क्या हो रहा है कि सूत गोस्वामी उनको कथा सुना रहे, तो सूत गोस्वामी बीच बीच में उनको ऐसे पुकारते हैं कभी हे विप्र। तो यहाँ पर भी बता रहे विप्र, हे विप्र तदीक्षण महोत्सव, तदीक्षण यानी कि उनको देखना ही, तद उन्हीं को देखने के लिए महोत्सव, महोत्सव मतलब महान उत्सव मानकर, वो स्त्रियां आज ऐसे झुंड बनाकर श्रृंगार करके भगवान के दर्शन करने के लिए छत पर आई हैं। उनको मानो ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव यही है कि हम भगवान का दर्शन करें। वास्तव में जीव के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा मंगलमय अवसर वही होता है जब उसको भगवान के दर्शन प्राप्त हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं तदीक्षण महोत्सव, श्री कृष्ण का दर्शन ही जिनके लिए महोत्सव है। तो जैसे ही उनको खबर पड़ी कि भगवान द्वारिका में प्रवेश हो गए हैं, वो तुरंत ही सब महलों की अटारियों में चढ़ गईं और भगवान के दर्शन की लालसा से, भगवान के दर्शन का आनंद लेने के लिए वो वहां पर ऊपर जाकर भगवान को निहारने लगे। अनुवाद, जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारिका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान को देखने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं। इसे वे एक महोत्सव समझ रही थी कि बहुत बड़ा आज हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जो बहुत खुश होकर भगवान के दर्शन करने के लिए वो ऊपर गई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से इन स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि भगवान का दर्शन करना निस्संदेह अपने आप में एक महोत्सव जैसा ही है, जैसा कि द्वारिका की स्त्रियों ने माना। आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी तरह मानती हैं। अभी देखो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जब भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, और भगवान में और भगवान की विग्रह में कोई भिन्नता नहीं है। आज द्वारिका की स्त्रियां जिस प्रकार भगवान को रथ पर आरूढ़ देखने के लिए इतनी उत्साह हैं, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आज भी विशेषकर झूलना तथा जन्माष्टमी उत्सवों के अवसर पर भगवान के मंदिर में, जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में एकत्रित होती हैं। मंदिर में स्थापित भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न नहीं होता है। भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है, और इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा इसे विस्तार दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि ये तो साक्षात भगवान का अर्चा अवतार है, ये भगवान की अर्चा विग्रह कोई साधारण मूर्ति नहीं होती है। ये अर्चा विग्रह जो है वो केवल भक्तों के भक्ति को सरल बनाने के लिए, अब क्योंकि भक्ति में क्या है, हमें भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना है, तो भगवान विग्रह स्वरूप स्वीकार करते हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा उसे विस्तारित किया जाता है, और भगवान विग्रह के अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं ताकि भक्त जो है वो सरलता से अपने प्रेम का, अपने भाव का आदान प्रदान कर सके। भौतिक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती, अतएव भगवान अर्चा विग्रह स्वीकार करते हैं जो मट्टी काट तथा पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं रहता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भले ही भौतिक वस्तुओं से बना हो लेकिन फिर भी जब उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो आध्यात्मिक बन जाता है, तो वो साक्षात भगवान का स्वरूप बन जाता है, उसमें कोई भी भौतिक कल्मश नहीं रहता। कैवल्य एकाकी होने के कारण भगवान में कोई पदार्थ नहीं रहता, वे अद्वितीय हैं, अतएव वे भौतिक धारणा से कल्मश ग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते, किसी भी पदार्थ में आकर प्रकट हो सकते हैं। तो जैसे भगवान जो है वो अद्वितीय है, तो भगवान किसी भी वस्तु के साथ यदि उनका संपर्क हो जाता है तो वस्तु के अंदर जो दुष्टता है वो समाप्त हो जाती है, कलमश ग्रस्त नहीं होते, भगवान मट्टी नहीं बन जाते बल्कि वो विग्रह भगवान बन जाती है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतएव भगवान के मंदिर में सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं उन उत्सवों के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारिका में भगवान के वास के दिनों में मनाए जाते थे। श्रील प्रभुपाद जी विग्रह के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान साक्षात होते थे और उनके दर्शन के लिए जिस प्रकार से उत्साह होता था सबके अंदर, और जिस तरह से भगवान के साथ किसी भी उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता था, तो आज भी भगवान हमारे साथ है विग्रह रूप में, तो हमें उसी प्रकार से सेलिब्रेशन करना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रामाणिक आचार्य जो ईश तत्व से भली भांति परिचित होते हैं ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं वे इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतएव वे स्त्रियां या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, वे भगवान के दिव्य रूप में विश्वास ना करने वालों से 1000 गुना धन्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर साकार और निराकार पूजा के विषय में बताते हैं कि वो लोग बिल्कुल अल्पज्ञ हैं जो ये मानते हैं कि ये मूर्ति पूजा तो बचकाना है, या फिर ये गलती कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति कोई भगवान नहीं हो सकती, ऐसी बातें वो सिर्फ अल्पज्ञ अपनी अल्पज्ञता के कारण करते हैं। लेकिन जो वास्तविक में जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण होते हैं, जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं, वो तो ईश तत्व से भलीभांति परिचित होते हैं। क्या है ईश तत्व? वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान ब्रह्म भी हैं, भगवान परमात्मा भी हैं और भगवान का एक स्वरूप भी है। तो ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना करते हैं आचार्यगण और विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए, ताकि वो भगवान को पहचान सकें, ताकि वो भगवान के साथ अपने प्रेम को पुनः स्थापित कर सकें, सुषुप्त प्रेम को जागृत करने के लिए वो ऐसे मंदिरों की स्थापना करते हैं और ऐसे उत्सवों को ना सेलिब्रेशन करते हैं, ताकि लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं, जो नास्तिक हैं, जो भगवान के विज्ञान से परिचित नहीं हैं, वे इस प्रयास को मूर्ति पूजा कहकर गलती करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की दिव्य रूपी झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, भगवान के दिव्य रूप में विश्वास ना करने वालों से 1000 गुना अधिक धन्य है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में प्रतीत होता है कि द्वारिका के वासी बड़े बड़े महलों के मालिक थे, इससे नगर की समृद्धि सूचित होती है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गई। स्त्रियां गलियों की भीड़ में नहीं गई और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा बनी रही। मनुष्य के साथ बनावटी समानता नहीं थी, स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुष को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी शिक्षा देते हैं कि आजकल मॉडर्न सोसाइटी में जो स्त्री पुरुष एकता या समानता की बातें की जाती हैं, उससे कोई स्त्री की प्रतिष्ठा बढ़ रही नहीं है, बल्कि स्त्री की प्रतिष्ठा तो तब है जब उसका सम्मान किया जाए, जब उसको सम्मान दिया जाए। तो ये जो बिना रोक टोक मिलना जुलना है, श्रील प्रभुपाद जी उससे मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी स्त्रियों का सम्मान बरकरार रहेगा। और आगे सूत गोस्वामी अत्यंत सुंदर रीति से बता रहे हैं, मानो सोनक मुनि पूछते हैं कि भगवान तो द्वारिका में ही रहते हैं, अब भगवान तो रोज रोज आते हैं जाते हैं, मतलब ये रथ यात्रा तो डेली तकरीबन होती होगी यहाँ पर। भगवान तो, क्योंकि जिस प्रकार भगवान वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, उसी तरह द्वारिका छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। द्वारिका में 16,108 पत्नियां रहती हैं, क्या जाने देंगी भगवान को? तो भगवान को किधर जाने देती नहीं, तो भगवान बार बार जाते हैं किधर, तो फौरन आ जाते हैं। तो ये इस तरह का उत्सव तो समझो प्रत्येक जल्दी जल्दी होते होंगे बार बार, तो फिर इतनी क्या उत्सुकता है कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और वो तो चलो ठीक है, पुरुष हैं तो पुरुष लोग आए दर्शन करने के लिए, स्त्रियों को क्या है, उनको भी ऊपर ऊपर चढ़ के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आखिर भगवान के अंदर ऐसी क्या विशेषता है? पहले तो आना भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए ही अगर हम इसको बताएं कि भगवान के अंदर क्या विशेषता है, तो वैसे ही हम इस बात पर सहमत होंगे कि ऐसा व्यक्ति जो षडेश्वरियों से व्यक्त हो। भगवान का अर्थ है कि ऐश्वर्यश्च समग्रस्य, वीर्यश्च यशस्य, ज्ञान वैराग्यश्च एव षडनाम भव इति गणा। वो व्यक्ति जिसके पास संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण धन और संपूर्ण वैराग्य हो, वो व्यक्ति भगवान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तो सूत्र गोस्वामी बता रहे हैं कि श्लोक नंबर 25 मेरे साथ पढ़िए, नित्यम निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृश्यः, श्रयोदामङ्गमुच्यतम् श्रयोदामङ्गमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि त्रिशः श्रयोधामंगमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृश्यः श्रयोधामंगमच्युतम्। श्रील सूत गोस्वामी कह रहे हैं नित्यम निरीक्षमाणानां, नित्यम का मतलब होता है सदैव, हर वक्त, अक्सर, बार बार। नित्यम मतलब नियमित रूप से, सदैव निरीक्षमाणानां मतलब उनको देखने वालों का, वो सदैव देखते थे भले भगवान के दर्शन का, उन्हें बार बार सौभाग्य प्राप्त होता था। जैसे अब देखो कहीं पर अगर राष्ट्रपति रहता है तो राष्ट्रपति को देखने के लिए क्या होता है, उत्सुकता होती है, भाई आज निकल रहा है तो हम लोग सब बालकनी से खड़े होते हैं, देखते हैं कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर गुजरेगा, अभी हम उसको देखें। फिर एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चार बार, पांच बार, दस बार, फिर जब वो बार बार अगर हमारे एरिया से गुजरेगा तो फिर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। लेकिन भगवान तो द्वारिका में रह रहे हैं ना, फिर भी अब बार बार ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी, नित्यम निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां, यद्यपि यानी कि हालांकि, फिर भी यद्यपि होते हुए भी द्वारिकाओं का साम यानी द्वारिकाओं में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो भले ही भगवान को बार बार आता जाता देखते हैं, फिर भी एक बात है, भगवान के दर्शन और साधारण भौतिक व्यक्ति या वस्तुओं के दर्शन में एक ऐसी बात है कि जब हम भौतिक वस्तुओं को जितना देखते हैं या व्यक्तियों को जितना जितना हमारे करीब आते हैं या हमें प्राप्ति होती है या दर्शन की हमें ना उनका अवसर मिलता है, उतनी उतनी उसमें से जी भरने लगता है। जितना हमारे पास वो वस्तु आ जाएगी ना, जब तक वस्तु नहीं है या व्यक्ति जब तक हमें प्राप्त नहीं है, तब तक उसके लिए हृदय के अंदर एक लालसा होती है। लेकिन जब मिल जाता है और नित्यम का मतलब जब मिल ही जाता है, फिर तो उसके लिए उसको देखने का भी दिल नहीं करता है। सारा दिन मतलब ऐसा लगता है कि अभी इसे जान छूटे, थोड़ी देर किधर जाए तो मैं अपना काम करूं, है ना, ऐसा होता है। लेकिन भगवान के दर्शन में या भगवान की कथा में, भगवान के नाम में वो रस है जो भक्त जितना ज्यादा प्राप्त करता है उसे उतनी ज्यादा लालसा होने लगती है, उतनी हृदय के अंदर तृप्ति नहीं होती भगवान के दर्शन से, भगवान की कथा से, भगवान के पवित्र नाम से तृप्ति होती नहीं है, बल्कि और भी लालसा बढ़ने लगती है। एक जगह कीर्तन में जाएंगे, एक जो भक्त नहीं होंगे, मतलब एक दफा जाएंगे फिर बोलेंगे यहाँ बहुत अच्छा लगा, वापस जाएंगे। लेकिन जो भक्त होंगे ना, वो तो क्या करेंगे, मौका ढूंढ रहे होंगे कहीं पर कीर्तन हो तो जाएं, कैसे किसी भगवान के विषय में श्रवण करने को मिले, तो किसी तरह से भगवान के दर्शन करने को मिले। मतलब भक्त लोगों की प्यास जो है वो दिन ब दिन बढ़ती है, इसलिए क्योंकि द्वारिका की सारे व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान जब भी आते हैं, इवन हम भी देखते हैं ना, जब भी मंदिर में रोज भगवान के दर्शन होते हैं, है ना, जब वृंदावन में जाते हैं, मायापुर में जाते हैं, डेली भगवान की दर्शन आरती होती है, और जब दर्शन आरती होने वाली होती है तो सब कितनी उत्सुकता के साथ भगवान के दर्शन का इंतजार, पर्दा खुलने का इंतजार, इवन जब निकल रहे होते हैं घर से, तब हृदय के अंदर ऐसा भाग के, बस भी 2 मिनट रह गए, भगवान के पर्दे खुल जाएंगे, हमें दर्शन करना है, दर्शन आरती अटेंड, भगवान, उस समय इतना उत्साह होता है हर एक के व्यक्ति में, हर एक के हृदय के अंदर ऐसा ऐसी आस होती है कि मैं पहले भगवान के दर्शन करूं, सबसे पहले खड़ा होने की इच्छा होती है कि मैं आगे से दर्शन करूं, मैं भगवान के हर एक अंग का बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर सकूं। क्या विग्रह को कल नहीं देखा था, सुबह को देखा था, रात को देखा था, लेकिन फिर हर वक्त जब भी पर्दा खुलता है, भक्त कितने उत्साह के साथ भगवान को फ्लावर डालते हैं भगवान के चरणों में, और भगवान को देखने के लिए कितने उतावले होते हैं। इसका कारण बताते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, नवी तृप्त्यन्ति, नवी मतलब वो तृप्त होते ही नहीं है, वित्रप्यन्ति ही दृश्य, मतलब दृश्य जो है, आंख जो है वो तृप्त होती ही नहीं है, उनकी दृष्टि जो है वो भगवान की दर्शन करने से तृप्त कभी नहीं होती, नवी तृप्यन्ति ही दृश्य, बल्कि जितना अधिक दर्शन करते हैं उतना ही अधिक दर्शन की लालसा बढ़ती है, और हर समय जब भगवान का दर्शन करते हैं तो नया उत्साह होता है, नया उल्लास होता है। जैसे भगवान का साक्षात दर्शन करते समय तो कितना उल्लास होगा, जब हम पर्दा भले भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जब भगवान इस धरती पर अभी एक होता है, साक्षात दर्शन होता है, और एक जो है वो अप्रकट दर्शन होता है, यानी कि भगवान विग्रह में तो होते हैं लेकिन साक्षात लीला नहीं हो रही होती, अप्रकट लीला हो रही होती उस समय, तो जब इस समय भी भक्तजनों के हृदय में इतनी इच्छा होती है कि बार बार भगवान का दर्शन करें, तो जब साक्षात प्रकट लीला भगवान की चल रही थी तो अगर उनमें उत्साह है, उल्लास है, तो वो तो स्वाभाविक है। और आगे भगवान के विषय में कहते हैं कि भगवान को देखकर तृप्ति क्यों नहीं होती, ना भी तृप्यन्ति ही दृश्य क्यों नहीं होती, श्रयो धामंगमच्युतम। श्रेय कहते हैं सौंदर्य को, श्रेया कहते हैं लक्ष्मी को, श्रेया कहते हैं श्री, मतलब जो वास्तव में श्रेय की देवी है, जो सौंदर्य की देवी है, जो सम्मान की देवी है, जो सबसे सुंदरता जो है, उसने क्या किया है, श्रियो धामंग, यानी कि भगवान का जो अंग अंग है, भगवान का एक एक अंग इतना सुंदर है, भगवान के नेत्र इतने सुंदर हैं, भगवान के होंठ इतने सुंदर हैं, भगवान का पूरा शरीर इतना सुंदर है, ऐसा आभास होता है कि शोभा जो श्रेय है, जो शोभा है, जो सुंदरता है, उसमें भगवान के प्रत्येक अंग में धामांगम अच्युतम, भगवान के धाम अंग में अपना निवास बना दिया है ना। सारी सुंदरता ने, संसार की जितनी भी सुंदरता है, उसने इकट्ठा होकर वो सारी भगवान के एक एक अंग में आकर निवास करके बैठ गई है। अब इतना सुंदर भगवान, इतना मधुर भगवान का स्वरूप, तो फिर उसको देखने के लिए यदि लालसा भर रही है तो वो तो स्वाभाविक है, अच्युत है भगवान के अंदर, कहीं को अमोघ है भगवान के अंदर, कोई कमी नहीं, भगवान सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, तो फिर सबकी इच्छा हो रही है कि भगवान के दर्शन करें। अनुवाद, द्वारिकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब द्वारिका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं, तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इसे सूचित होता है कि उनके दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बार बार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतार लिया था, किंतु तो भी वे अच्युत हैं। सारे जीव च्युत हैं, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो उनमें आध्यात्मिक पहचान का अभाव रहता है, जिसके कारण उनका शरीर, भौतिक शरीर जन्म वृद्धि रूपांतर परिस्थिति क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, वे अपने यथारूप में अवतरित होते हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि उन स्त्रियों को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम तो भगवान को देखते रहते हैं, अभी क्या इतनी जल्दी करना या इतना उत्साह करना, भगवान तो नित्य नवीन है। भक्त जब भी भगवान का दर्शन करता है तो उसे ऐसा लगता है कि आज मैं भगवान को कितना, भगवान आज कितना सुंदर लग रहे हैं, भगवान के नेत्र आज कितना सुंदर लग रहे हैं, आज भगवान बहुत प्यारे लग रहे हैं। हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं पहली बार भगवान को इतना अच्छे से दर्शन कर रहा हूँ, इतना अच्छा दर्शन मुझे पहली बार मिल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं तो रोज भगवान के दर्शन करता हूँ, नहीं, ये जो तृप्ति का श्री प्रभुपाद जी बोलते नियम है वो भौतिक सृष्टि में होता है, लेकिन भगवान क्योंकि भौतिक जगत के नहीं है, वो भगवान आध्यात्मिक है, इसलिए भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो उनमें आध्यात्मिक पहचान बाकी रहती है। लेकिन जब ये भौतिक जीव जो है वो जब भौतिक जगत में आता है तो च्युत हो जाता है। यहाँ पर अच्युत भगवान, भगवान अच्युत है, चाहे भौतिक जगत में रहें या आध्यात्मिक जगत में रहें, उनकी आध्यात्मिकता तो वही रहती है। भगवान के अंदर जो भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं होता, भगवान
पूर्ण अच्युत हैं, भगवान के अंदर कोई कलमश नहीं होता। लेकिन जब जीव आता है ना संसार में, तो जीव क्या इस भौतिक जगत के संसर्ग में आता है तो आध्यात्मिक पहचान का अभाव रहता है, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जो है, अब शरीर तो भौतिक है ना, भगवान का तो शरीर भी भौतिक नहीं है, जीव का शरीर भौतिक है, इसलिए क्या करता है, वृद्धि रूपांतर जन्म मृत्यु ये सब उसके अंदर आता रहता है, विनाश हो जाता है और प्रकृति के नियमों के अधीन रहता है। परंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है, वे अपने यथा रूप में अवतरित होते हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शोभा का आगार है, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते। शोभा का आगार मतलब सारी जो सबसे ज्यादा जो श्रेय है, जैसे यहाँ सूत गोस्वामी ने बताया, श्रेयो दामांगम अच्युतम, कि सारी की सारी सुंदरता, सारा का सारा बल, सारा का सारा ऐश्वर्य, सारा का सारा ज्ञान, सारी की सारी शक्ति, जिसका हम अनुभवातीत, जो उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसे देखो, हम लोग बार बार ये शब्द सुनते हैं तो ये बहुत ऐसा लगता है कि क्या बस भगवान के अंदर यही क्वालिटीज है, लेकिन कभी सोच सकते हैं कि जरा सी सुंदरता अगर किसी के अंदर होती है तो हमको कितना दिल करता है उसको बार बार देखने का। थोड़ा सा बल होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है तो कितना आकर्षण करता है वो हमें। तो फिर जब भगवान संपूर्ण अनुभवातीत समस्त शोभा के आगार हैं, तो भगवान अपनी ओर कितना आकर्षण करते होंगे जब वो साक्षात है या अभिविग्रह रूप में। तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता ही है कि फिर भगवान सबको आकर्षित क्यों नहीं करते? जब भगवान समस्त सौंदर्य के आगार हैं, तो सबको आकर्षित क्यों नहीं करते? उसका उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण 7.25 में, नमाम दुष्कृति नो मोढ़ा प्रपद्यन्ते ना, सॉरी हाँ, नाहम प्रकाश सर्वस्त योग माया समावृत। भगवान बोलते हैं सबको तो दिखता ही नहीं हूँ मैं, सारे जो दूसरे लोग हैं उनको तो, जो मुझसे प्रेम नहीं करते उनके लिए तो मैं योग माया के पर्दे द्वारा ढक जाता हूँ। वो भले देखे ना मुझे, फिर भी मुझे समझ नहीं पाते मेरे ऐश्वर्य को, मेरे सौंदर्य को, मेरे बुद्धि को, मेरे बल को देख ही नहीं पाते। ये कैसे होता है? जैसे अभी देखो, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है एक्सरे निकाल के आओ, तो फिर है ना हम लोग एक्सरे निकलवा के जब एक्सरे प्रिंट जाके डॉक्टर को, हम खुद उसको कितना भी देखते हैं, कितना भी जांचते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर क्या है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कोई बीमारी है या कुछ है। फिर वही एक्सरे का जो वो है फिल्म, वो जब जाके डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर फौरन से हमें दवाई लिख कर देता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर ने वो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। भगवान को केवल नेत्रों से देखकर नहीं समझा जा सकता, जैसे एक्सरे को भी हम देख के नहीं समझ सकते, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भी ज्ञान चक्षु आवश्यक है। भगवान को वास्तव में श्रवण करके ही समझा जा सकता है। तो जिस तरह से एक साधारण चीज को भी हम लोग बगैर ज्ञान के नहीं समझ सकते, तो भगवान को भला कैसे समझ सकते हैं? तो इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि इसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टि घोषित होता रहता है। दिव्य नाम रूप गुण पार्षद आदि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं, और भगवान का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती, और न भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है, वे सबों के स्रोत हैं और असीम है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के नाम में, भगवान के दर्शन में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में इतना रस है कि उसमें कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए तो सूत गोस्वामी ने कहा, नई नवी तृप्त्यंति ही दृश्या, तृप्ति होती नहीं है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी बताते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्त विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु। भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का सौंदर्य बहुत ज्यादा रसमय है, आनंदमय है, परंतु जिसको भवरोग हो जाता है, जिस प्रकार से जिसको जॉइंटिक्स हो जाता है उसको मीठी वस्तु मीठी नहीं लगती, उसी प्रकार जिसकी आंखों पर ये भौतिकता का पर्दा चढ़ गया है, जिसको भवरोग हो गया है, उसको भगवान के नाम में कोई आनंद नहीं आता है। तो इसके लिए मेडिसिन भी भगवान का नाम ही है। यदि हम भगवान के नाम को सदैव उच्चारण करते रहेंगे प्रेम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और भगवान की कथाओं को श्रवण कर, अक्सर लोग बोलते हैं हमें खबर है कि भगवान का नाम लेना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम जानते हैं कि भगवान के नाम के अतिरिक्त और इस कलयुग में कोई और साधन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं है। जब नाम जप कर रहे होते हैं तो आनंद नहीं आ रहा होता है, बल्कि बोझा समझ के कर रहे होते हैं, तो इस आनंद को कैसे वृद्धिमान किया जाए, इस आनंद को कैसे बढ़ाया जाए कि हमें तृप्ति न हो। केवल और केवल एक ही तरीका है, शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से यदि हम श्रवण करते हैं भगवान के विषय में, तो फिर हमारे प्रति जो है, हमारे हृदय में जो है भगवान के प्रति स्नेह बढ़ता है, भगवान के नाम के प्रति। जो भक्त भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, उनका संग करना, जो सदैव भगवान के नाम का आनंद लेते हैं, उनसे श्रवण करना, तो जैसे हम श्री प्रभुपाद जी के द्वारा एज इट इज श्रवण कर रहे हैं ना, तो श्रवण करते 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 क्या होगा, सद्यो हृदय वरुद्ध कृति भी शुश्रु, सुनते 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 हमारे हृदय के अंदर जो मलिनता है वो समाप्त हो जाएगी, और हृदय के अंदर कृष्ण के नाम के प्रति, कृष्ण के दर्शन के प्रति, कृष्ण की सेवा के प्रति दृढ़ उत्साह उत्पन्न होगा। उसके लिए धैर्य रखना है, उत्साह के साथ श्रवण करना है, और प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहना है। और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।